ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद है, पांचवा अध्याय और श्लोक नंबर 32। जब तक तीन चार श्लोक पढ़ने होंगे ना, तात्पर्य जब तक नहीं। ये अध्याय का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप देना। ये 32वां श्लोक है। एतावेदुक्त्वर्पयो नारदो अमोघ दर्शन तेपी चान्वगमन मार्गम भ्रात्राणाम एव मारिश एतावत। इतना उक्त्वा कहकर प्रययो उस स्थान से चले गए नारद, नारद मुनि अमोघ दर्शन, जिनका चितवन सर्व मंगलमय है। ते वे अपि भी च तथा अन्वगमन अनुगमन किया मार्गम मार्ग का, भ्रात्राणाम अपने पहले वाले भाइयों का, एव निसंदेह मारीश हे महान आर्य राजा। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत से प्रभुपाद द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यो में सर्व अग्रगणी नारद मुनि, जिनकी कृपया दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं होती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया, संतान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया और वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। हरे कृष्ण, इसको ज्वाइन हो गए। इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम आगे के दो चार श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक का अनुवाद है। सवलाशों ने सही मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या भगवान की कृपा से प्राप्य है। विरात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए किंतु अभी तक वापस नहीं आए। इस समय प्रजापति दक्ष ने, जो इन सबके पिताजी थे हरि अश्व के और सवलाश्व के, दक्ष ने देखा बहुत सारे अपशकुन दिख रहे हैं और विविध स्त्रोत्रों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली सेकेंड बैच। सवलाश्व ने नारद मुनि के उपदेश के अनुसार अपने बड़े भाइयों के मार्ग का अनुसरण किया है। जब दक्ष ने सुना कि उनके दूसरे पुत्र सवलाश्व ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए जगत को छोड़ दिया है, तो वे नारद मुनि पर बहुत क्रोधित हुए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और गुस्से से इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि नारद मुनि ने प्रिय व्रत और उतानापाद से लेकर स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। उन्होंने उतानापाद के पुत्र ध्रुव का उद्धार किया और प्रचिनी बारिश तक का उद्धार किया जो सकाम कर्म में लगे हुए थे, तो भी वे प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने नारद को अपने समक्ष देखा क्योंकि नारद स्वयं उनका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास ही उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला, क्योंकि शोक विवल दशा भक्ति योग को समझने के लिए उपयुक्त समय होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, चार प्रकार के लोग अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात दुखी व्यक्ति धन की आवश्यकता वाले और पूछताछ करने वाले और ज्ञानवान, चार प्रकार के लोग भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था, अतएव नारद मुनि ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। हरे कृष्ण। नारद मुनि की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पवित्र दिन है, आज ललिता देवी का अपीयरेंस डे है, षष्ठी छठ राधाष्टमी के दो दिन पहले। तो मैं थोड़ा सा इस श्लोक पे चर्चा करने के बाद फिर ललिता सखी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि हम सब जो है रूप गोस्वामी के परंपरा में हैं, रूपानुग हैं, और स्वयं रूप गोस्वामी जो हैं भगवान की लीलाओं में ललिता सखी को मदद करते हैं। तो हम सब जिस परंपरा में, हम ललिता सखी के दास दास दासियों के दासियों के दासियों के रूप में हैं, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है प्रार्थना करने के लिए, ललिता सखी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, जिससे हम भी रूप गोस्वामी के आश्रय जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त, उनके मार्गदर्शन में हम भी राधा और कृष्ण की तरफ तेजी से प्रगति कर सके। तो आज ये श्लोक जो चर्चा चल रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत रुचिकारक कथा है, कि कैसे नारद मुनि सबका उद्धार करना चाहते हैं। आप देखते हैं भागवत में पढ़ते हैं या महाभारत में रामायण में, नारद मुनि सब जगह पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो दुष्ट कंस हो या वो मृगारी शिकारी हो या वो ध्रुव महाराज हो, नारद मुनि का नेटवर्क कवरेज सब जगह पर है, है ना, सबका उद्धार करना चाहते। ध्रुव महाराज के केस में ध्रुव महाराज को शब्दों की चोट लग गई थी, उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने कुछ कठोर शब्द बोल दिए और वो घर छोड़कर निकल पड़े। वास्तव में उनके जो पहले गुरु हैं वो सुनीति हैं, उनकी माता, लेकिन सुरुचि ने कठोर शब्द बोल के उनको भगवान के भक्ति की ओर आगे बढ़ने में सहायता की। जब कोई सच्चा भक्त होता है, उसके जीवन में कोई भी घटना होती है, उसको भगवान के करीब ले आते। तो ध्रुव महाराज घर छोड़कर जब चले गए और जंगल में, तो रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने परीक्षा ली उनकी कि आप कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो बचपना का समय है, खेलने का समय है, इतना जल्दी इस्कॉन मत ज्वाइन करो। इसे कई बार आपके रिश्तेदार भी ऐसा बोलते होंगे कि भाई ये भक्ति करना तो बुढ़ापे के लिए, 70 साल के बाद में है, अभी तो इंद्र तृप्ति कर लो। तो ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज दृढ़ निश्चयी थे। भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उत्साह, धैर्य, निश्चयात, एक धीरज बनाए रखें, डिटर्मिनेशन कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना ही है। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किलें आए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मैं कृष्ण के चरणों को कभी नहीं त्यागूं। इसको बोलते दृढ़ व्रत। इसे रघुनाथ दास गोस्वामी दृढ़ व्रत था। उनके माता पिता उनको रोकने का प्रयास करे थे, उनको बांध के रखा था, लेकिन फिर भी वो भाग कर चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले गए। तो ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के बाद जब वो पास हो गए, तब नारद मुनि ने उनको यहाँ पर भेजा मधुवन के पास, बोले यहीं पर आप भगवान की भक्ति करो, और उनको मंत्र दिया। और ध्रुव महाराज को कुछ ही महीनों में भगवान की प्राप्ति हो गई। पहले महीने तो वो कुछ फल लेते, दूसरे महीने में सूखी पत्तियाँ खाते, तीसरे महीने में कुछ वो पानी पीते, और धीरे धीरे श्वास लेना भी कम कर दिया उन्होंने। यानी 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे, हरे कृष्ण। यानी आज है 4 तारीख है, 4 तारीख को श्वास ले ली, अगली बार 16 तारीख को, फिर 28 तारीख। हम अगर ऐसा करें तो किचन का बिल बहुत बच जाएगा, लेकिन कोई बचेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो फल ध्रुव महाराज को मिला बहुत कठोर तपस्या से, वो फल आपको बिना ज़्यादा तपस्या के मिल सकता है। कलयुग में ज़्यादा तपस्या की जरूरत नहीं है, बस हरि नाम लेना। तो ध्रुव महाराज को अंत में भगवान के दर्शन हो गए नारद मुनि की कृपा से। भगवान पूछा वो क्या चाहिए, वो राज्य चाहते थे, लेकिन भगवान के दर्शन के बाद बोले स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचयेत, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था, अब हीरा मिल गया। कोई 500 रुपये, कोई 50 रुपये ढूंढ रहे, उसको 2000 का नोट मिल जाए तो फिर ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भक्ति मिल गई, उसमें सब कुछ है। ध्रुव महाराज का उद्धार हो गया। प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में थे, तभी नारद ने उनको उपदेश किया। प्रहलाद महाराज ने पहला भागवतम क्लास अटेंड किया जब उनकी उम्र कितनी थी, माइनस 0 से भी कम थी, माइनस फ्यू मंथ्स थे, तभी से भागवतम अटेंड किया उन्होंने। और उनकी माता तो जो सुना था भूल गई, लेकिन ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को याद था। नारद ने उनका उद्धार किया। मृगारी शिकारी तो इतने दुष्ट, जानवरों को तड़फा रहे थे, आधा मार के छोड़ रहे थे, लेकिन जब वो नारद मुनि के संपर्क में आए और नारद मुनि उनको समझाया तो बहुत विचलित हो गए कि मैंने इतने पाप किए, कैसे मेरा उद्धार होगा। बस नारद मुनि ने बोला अपना धनुष तोड़ दो। धनुष तोड़ना मतलब नौकरी से इस्तीफा देना, बिजनेस बंद करना, और बस आप नाम जप करो। नारद मुनि की कृपा से मृगारी इतने महान भक्त बन गए। यहाँ तक कि एक बार नारद मुनि को देख कर जब प्रणाम करने जा रहे हैं तो कुछ चींटियों को देखा उन्होंने कि रास्ते में चींटियां हैं, अगर मैं प्रणाम करूंगा तो चींटियों की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्हें रुक गए वो, और धीरे से चींटियों को एक और करके फिर प्रणाम किए। कहाँ वो जानवरों को तड़फा रहे थे और कहाँ वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यह नारद मुनि के संघ का प्रभाव। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र ने बताया कि अगर लव यानी एक सेकेंड का छोटा सा भाग, इतने समय के लिए भी अगर संग मिल जाए एक सच्चे वैष्णव का, सर्व सिद्धि, पूर्णता की प्राप्ति है। नारद मुनि के ही परंपरा में शिल प्रभुपाद हैं। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को उद्धार किया, वैसे प्रभुपाद जी ने भी कई सारे शिष्यों का उद्धार किया। प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे, जो आज कथा चल रही है इसके एंड में आएगा, कि दक्ष प्रजापति नारद मुनि को शाप दे देते हैं कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बिना भोग किए लोगों को वैराग्य के मार्ग पर ले जा रहे हो, तो मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम एक स्थान पर ज़्यादा समय नहीं रुक सकोगे। दक्ष को क्या लगा कि शाप के कारण नारद मुनि बहुत उनको इधर उधर घूमना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी, और दक्ष को आसक्ति थी एक ही स्थान में रहने की, तो उसको लगा ये शाप हो जाएगा तो दुखी होंगे, लेकिन नारद मुनि के लिए वरदान हो गया, क्योंकि नारद मुनि एक स्थान नहीं रुके बल्कि और भ्रमण करने लगे, और भी ज़्यादा वो प्रचार करने लगे। आप प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारद मुनि को दक्ष का शाप मिला, ऐसे ही प्रभुपाद जी अपने बारे में बोलते हैं कि मैं इस्कॉन के बहुत सारे सेंटर हैं और वहाँ पर भक्तों ने मेरे लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं, लेकिन मैं भी एक स्थान पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने जिन भक्तों को ब्रह्मचर्य या सन्यासी बनाया है उनके माता पिता का शाप मुझे प्राप्त हो गया है, इसीलिए मैं अभी भ्रमण करता रहता हूँ। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभी मेरी इच्छा है भागवत का अनुवाद करूँ एक स्थान पर रह के, इसलिए मैं अपने शिष्यों से आज्ञा देता हूँ कि नारद मुनि का शाप है, दक्ष को, दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया, वो शाप आप भी स्वीकार कर लें, जिससे मैं एक स्थान पर रहकर अनुवाद कर सकूँ। तो नारद मुनि के संग से सबका उद्धार हो गया। वाल्मीकि कितने क्रूर स्वभाव के थे, वो आते जाते यात्रियों का मर्डर करते, चोरी करते उनको, लेकिन नारद मुनि से उनका दर्शन हुए, एक साधु के दर्शन से उद्धार हो जाता है, शब्दों के तो क्या बोलना, खाली दर्शन है पवित्र करो यही तो मार गुण। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप ये सब कर रहे हो, आपको पता है इसका कितना भयानक फल होगा, इसमें अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरा जरूरी कर्तव्य है। नारद मुनि बोले आप पूछो अपने परिवार वालों से, क्या वो इस पाप को ग्रहण करेंगे जिससे तुम धन कमा रहे हो। जब अपने परिवार वालों के पास गए तो हमने मना कर दिया, बोले हम क्यों सहन करें, आप पाप कर रहे हो, आपको ही फल भुगतना पड़ेगा। तब फिर नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की मुझे रास्ता दिखाओ। नारद मुनि उनको बोला कि ठीक है आप राम का नाम लो, बोलो राम 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 राम, अभी आप तो बहुत अच्छे सुकृति है आपकी, तो आप राम राम आसानी से बोल रहे हो, लेकिन वाल्मीकि को राम नाम लिया नहीं जा रहा था, इतने पाप किए थे, इतने पाप के कारण वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते थे, राम राम बोल ही नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि ने ऐसे नहीं सोचा कि चलो नहीं बोल रहा छोड़ो दूसरे को पकड़ते हैं, नारद मुनि इतने दयालु थे कि किसी न किसी तरीके से दवाई देना चाहते थे, जैसे अच्छा डॉक्टर देखता है कि कोई पेशेंट है दवाई नहीं ले पा रहा है, दूसरे तरीके से दवाई दो उसको, उसको ठीक है गोली नहीं ले पा रहा उसको इंजेक्शन से दो, इंजेक्शन नहीं दे रहा तो आईवी से दो, किसी ना किसी तरीके से दवाई मिलनी चाहिए। और दवाई क्या है, हरि नाम ही दवाई है, एनची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये जो औषधि है ये हरि नाम है, और चैतन्य महाप्रभु ये दवाई देने, दवाई लेकर आए बांटने के लिए। तो नारद मुनि एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट प्रचारक हैं, बहुत ही दक्ष हैं, बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने बोला कि आप राम राम नहीं बोल पा रहे, आप सिर्फ मरा मरा बोलो। तो उसको बोला बोलो मरा मरा मरा, तो क्या बोलने लगे, मरा 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 मरा, उसका आदत थी बोलने की, ये मरा मरा मरा, तो मरा मरा बोल के उसका उद्धार। इतने बड़े भक्त बन गए कि आज उनकी लिखी हुई रामायण को बड़े बड़े परमहंस व्यक्ति भी पढ़ते हैं। तो इस संघ का प्रभाव नारद मुनि के जो ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन, और यहाँ आज की कथा में हम देख रहे हैं कि उनके संघ से दक्ष के पुत्रों का उद्धार हो गया। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं हरियाश्व और शवलाश्व, दक्ष का मतलब है दक्ष मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होशियार बहुत बुद्धिमान, दक्ष एक्सपर्ट किसमें, संतान उत्पत्ति में। हरे कृष्ण, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबके, दक्ष ने ये डिपार्टमेंट चुना है कि कैसे प्रजा की संख्या बढ़ाई जाए। तो उनके 10,000 पुत्र हुए और उन्होंने भेजा उन पुत्रों को, जाओ तुम तपस्या करो और फिर लौट कर आना, फिर विवाह करना, फिर नॉर्मल सांसारिक जीवन बिताना। लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश वह नारद मुनि से मिल गए, नारद मुनि ने उनको बताया कि ये मनुष्य जीवन है भक्ति करने के लिए, आप क्यों इस तरह के इस इंटेंगलमेंट झंझट में मत फंसो। बस नारद मुनि के उपदेश इतने शक्तिशाली थे, क्योंकि जो व्यक्ति महान भक्त होते हैं उनके शब्दों का प्रभाव होता है, तो उनके प्रभाव से उनका मन बदल गया, वापस आए ही नहीं। पिताजी को SMS भी नहीं किया कि हम जा रहे हैं आश्रम जा रहे हैं, बस वो चले गए और लौट कर ही नहीं आए। अध्यक्ष वेट कर रहे हैं, क्या हुआ, मेरा बेटा हॉस्टल में गया था पढ़ाई करने के लिए, आए ही नहीं वापस, सीधा कोई मंदिर में चला गया, क्या हो गया। फिर कहीं से समाचार मिला उनको कि नारद मुनि के संग से उन्होंने वैराग्य जागृत हो गया। ये वैराग्य बहुत जरूरी चीज़ है भक्ति में, बिना वैराग्य के भक्ति है तो अपूर्ण भक्ति है। अगर आपके हृदय में भक्ति में प्रगति हो रही है, अपने आप संसारी चीज़ों के प्रति अनासक्ति जागृत होगी। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिस्तम अहम प्रपद्य। सर्वम भट्टाचार्य ने श्लोक लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंग है वैराग्य। वैराग्य मतलब जो चीज़ें कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उनका त्याग कर देना, जो चीज़ आवश्यक है वो रखना। तो नारद मुनि के संग से उनके 10,000 पुत्र भक्त बन गए, मतलब पूरे वैरागी बन गए। और वो वेट कर रहे, जब नहीं आए तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरे पुत्रों की उत्पत्ति करता हूँ। तो नेक्स्ट सेट था 1,000, पहले 10,000, 1,000, उनका मल्टीपल क्या था 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे। तो 1,000 और पुत्र हुए और वो भी तपस्या करने गए, और तपस्या करके वो लौट रहे थे और उनको भी नारद मुनि मिल गए रास्ते में। और नारद मुनि बहुत होशियार हैं, नारद मुनि जो एक्सपर्ट प्रीचर होता है जानते हैं कि क्या बोलना है। तो नारद मुनि उनके पास में गए और कहने लगे कि आपको मालूम है आपके बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को बड़े भाई के पदचिन्ह में चलना चाहिए। देखो तुम्हारे बड़े भाई जो हैं उनका नाम है हर्याश्व और छोटे भाइयों का नाम है सवलाश्व, बड़े भाई के पदचिन्हों में चलना ये छोटे भाई का कर्तव्य है। छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, अनुगमन करने वाले, इसीलिए आप भी उनके पदचिन्हों में चलो और संसार को त्याग दो। अगर उनके बड़े भाई भक्त नहीं होते तो नारद मुनि ये बात नहीं बताते थे। नारद मुनि एक्सपर्ट हैं कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये ना सब चीज़ें सब समय नहीं बताई जाती, झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन सत्य भी वही बोलना चाहिए जो लाभकारी हो दूसरे के लिए। तो नारद मुनि ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अपने बड़े भाइयों के पदचिन्हों में चलना चाहिए और आपको भी इस भगवान की भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। नारद मुनि के संग से इनका उद्धार हो गया और वो भी चले गए छोटे भाई बड़े भाइयों की तरह, और ऐसा मार्ग अपनाया जिसे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं इसके बाद वाले श्लोक में है, सदिचिनम प्रतिचिनम परस्पितम गता नाद्योपीते निवर्तन्ते पश्चिम यामि नारिव। उन्होंने वो मार्ग अपनाया जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है। हर भक्त को अपने जीवन की शैली अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए कि भक्ति के लिए ज़्यादा समय मिले, डायरेक्ट भक्ति के लिए। हालांकि सब कुछ भक्तियों का भाग है लेकिन परिवार के लिए समय होता है या ब्रह्मचारी के लिए भी शरीर और जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सब करने चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान के भक्ति प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी कथाओं को सुनना, उनका नाम का जप करना और भक्तों के संग में पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण इनमें भेद भी समझना चाहिए। भक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं, 64 अंग बताए गए हैं, सारे 64 तो करना संभव नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंगों का वर्णन किया, उसमें से भी फिर 5 बताए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 5 अंग कौन से हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, धामवास, यस, क्योंकि आप सब कर ही रहे तो पहला आइटम वही है, वृंदावन मथुरा में रहना। दूसरा साधु संग, साधु संग मतलब भक्तों के संग में रहकर कथा सुनना। जब मैं पहले इस्कॉन में ज्वाइन हुआ तो अमेरिका में था और मुझे एक साल बाद कुछ भक्त बोले हम कल चार भक्त मिलकर सिनेमा देखने गए थे, तो मैंने बोला ये तो मना है, हम तो कॉलेज लाइफ में भी छोड़ दिया था हमने। बोले नहीं, लेकिन हम भक्तों के संग में गए थे। तो ये साधु संग नहीं है। जैसे आज हम चार साधु संग मिलकर गोविंदा में पिज्ज़ा खा रहे थे, है ना। अभी गोविंदा पिज्ज़ा खाना मना नहीं है, मैं भी ले देता हूँ कभी कभी, लेकिन इसको साधु संग में नहीं गिना जाता। साधु संग मतलब चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, बैठकर भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, कीर्तन करो, या भगवान के मंदिर में आरती देखो या कथा सुनो, ये साधु संग। सत्ताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंत रित कर्ण रसायन कथा। ये जो कृष्ण कथा है ये भगवत भक्तों के संग में ही सुनने से लाभ मिलते हैं। जब कथा नहीं है तो अपने आप से पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जब कथा सुनने को मिले इससे बढ़कर क्या हो सकता है ना। और भक्तों को भी आदत हो गई है कि कई प्रवचन में नहीं आते, सोचते हैं चलो हम इंटरनेट पे सुन लेंगे बाद में। वो भी अच्छा है, नहीं सुनने से वो अच्छा है, लेकिन जो कथा जब हो रही है, कोई भक्त भी बोल रहा हो जो परंपरा में बोल रहे हैं, तो वो सुनने का लाभ अलग ही होता है। तो ये पांच आइटम है। पहला है मथुरावास साधु संग भागवत श्रवण, तीसरा है भागवत श्रवण, भागवत मतलब श्रीमद भागवत या चैतन्य चरितामृत या भगवद गीता रामायण, इन दिव्य ग्रंथों को सुनना, ये तीसरा आइटम है। और चौथा है नाम कीर्तन। ये कीर्तन दो प्रकार के हैं, एक तो मतलब माला पे जप करना या फिर मृदंग करताल के साथ भगवान का नाम पुकारना। इनफैक्ट इन सब पांचों में भी नाम कीर्तन, नाम जप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादा जोर नाम पे दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गति। इस घोर कलयुग में जहाँ पर हर स्टेप पर कोई ना कोई खतरा है, हरि का नाम ही एकमात्र आश्रय। एक बहुत सुंदर प्रवचन एक भक्त बता रहे थे कि दुनिया में जितनी भी सारी समस्याएं हैं, चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक हों, उनका हल है भगवान के नाम में आसक्ति जागृत करना, भगवान के नाम के प्रति गाढ़ अनुराग जागृत करना। ऐसे जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकता, ऐसा हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए कि भगवान को याद किए बिना हम रह ही नहीं सकते। हर क्षण भगवान का स्मरण करना। जैसे गोपियाँ जब कृष्ण छोड़कर भी चले गए तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में तरस रहे थे और हर क्षण कृष्ण को याद कर रहे थे। तो और साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और पांचवा क्या है, अर्च विग्रह की सेवा करना। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। ये विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं गुरुवाष्टकम में कि ये श्री गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगन, श्री विग्रह आराधन। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम जी और गौनिताय की स्थापना की। तो हो सकता है कि हम, क्योंकि हर एक भक्त तो रोज आरती नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए फिर 500 अल्टर बनाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे प्रभु जी हम तो ब्राह्मण दीक्षित भी नहीं हैं, तो कैसे श्री विग्रह आराधना करें। अगर आप श्री विग्रह की आरती को देख रहे हो तो भी वही फल मिलता है जो आरती करने का होता है, ध्यानपूर्वक दर्शन करना, आरती में भाग लेना। ड्यूटी वर्शिप का मतलब है न केवल आरती करना, मंदिर की सफाई करना, ये भी श्री विग्रह आराधना की तरह। एब्सोल्यूट लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज़। जैसे एक भक्त है पीछे भगवान के ड्यूटी रूम में बर्तनों को सफाई कर रहे हैं या कुछ भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये भी विग्रह सेवा है। तो इन पंच अंग बताए महाप्रभु ने। स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी इन पांचों में से एक अंग का भी अगर ध्यानपूर्वक पालन किया जाए तो पूर्णता मिल जाती, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारी आयु बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा फोकस श्रवण और कीर्तन पे होना चाहिए, जिससे कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान को याद करें। जैसे अंत समय बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि के मार्गदर्शन में सवलाश्व उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। और तब दक्ष डिबेट कर रहे हैं कि मेरे सेकंड जो बैच है स्टूडेंट्स का, वो भी आए ही नहीं कॉलेज से, वो ग्रेजुएशन करने गए थे और आए ही नहीं, वो वेट कर रहे हैं, अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। तब उनको समाचार मिला हरे कृष्णा, वो सब इस्कॉन में चले गए, सब भक्ति में आगे बढ़ गए और वापस ही नहीं आए। तब उनको बहुत गुस्सा आया। आज के श्लोक में बताया गया कि क्रोध के सहारे उनके होठ कांपने लगे। जब किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसके होठ कांपने लगते हैं। और अब यहाँ पर दक्ष को क्रोध आ रहा है। उनको क्रोध किस लिए आ रहा है? उसको खुशी होनी चाहिए, अरे मेरे बेटे भक्त हो गए तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, उनका भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। कोई एक परिवार में एक भक्त भी बनता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मतलब उसके माता पिता, माता पिता के माता पिता, दादा परदादा सुपर परदादा सब। और यही नहीं, उसके पहले के योनियों में, मान लो इसके पहले वो दूसरे परिवार में था, गंधर्व था, देवता था, मच्छर था, जो उसके माता पिता थे सबका उद्धार हो जाता। तो दक्ष को खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दक्ष बहुत क्रोध दिखा रहे हैं। तब नारद मुनि वहाँ पे आते हैं। नारद मुनि बहुत बुद्धिमान, जैसे अगर आपको स्टील से कुछ बनाना है, कोई बर्तन बनाना है, तो पहले उसको गर्म करना पड़ता है। आपको एक शेप चेंज करना है कोई चीज़ का, तो आप ऐसे हथौड़ा मारोगे कुछ नहीं होगा, उसको गर्म करके फिर पीटो तो बहुत जल्दी साइज बदल जाता। ऐसे नारद मुनि देख रहे हैं, जब जीव के जीवन में जब भौतिक विपत्ति आते हैं, विपत्ति के समय जब कोई उपदेश कोई सुनता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। हम नारद मुनि देख रहे हैं कि ये बहुत दुखी हैं कि मेरे बच्चे लौट के नहीं आए। तब नारद मुनि यहाँ पर आए। नारद मुनि को मालूम था कि गुस्से हैं मेरे से, और हम आगे के श्लोक में देखेंगे ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं जो दोहराने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता। वह नारद मुनि को बोलते हैं, तुम ढोंगी हो, ढोंगी, हाँ, तुम संत पुरुष का वेश धारण कर रहे हो, यू आर हिपोक्रेट, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वास्तविक संत हूँ। ये कौन संत ऐसे बोलेगा, मैं संत हूँ, हरे कृष्ण, मैं गृहस्थ होकर अच्छा संत हूँ, और तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे बेटों को सन्यासी बना दिया, हाँ, मैं भी मानता हूँ कि इंद्र तृप्ति जो दुख का कारण है, लेकिन उसको पहले अनुभव करना चाहिए, अनुभव के बिना वैराग्य नहीं होता। यानी वो क्या बता रहे हैं कि बिल्डिंग से गिरने के बाद ही समझ में आता है कि पैर टूटता है, ऐसे आप रोको मत, उनको गिरने दो, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति होता है श्रवण से सीख जाता है। पहला व्यक्ति वो है जिसको बोला जाए कि प्रभु जी आप बिल्डिंग के ऊपर से गिरोगे तो पैर टूट जाएगा, तो वो छलांग नहीं लगाता, बस सुन लिया। दूसरा बोलता है कि ये तो बोल रहे हैं, शायद डराने के लिए बोल रहे हैं, मैंने किसी को देखा तो नहीं। फिर एक दिन वो देखता है कि ये कोई महापुरुष मूर्ख वो बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं और गिर रहा है, उसका पैर टूट जाता है, तो बोलता है हाँ ये तो सही है, अब इसके बाद मैं नहीं करूँगा। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो सोचता है कि उसने छलांग लगाया लेकिन वो सही एंगल पर नहीं लगाया, मैं जानता हूँ कि कैसे छलांग लगाना है कि गिरने के बाद भी कुछ नहीं हो, तो जाता है ऊपर निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, इसका पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर होके 6 महीने वो हॉस्पिटल में रहता है और फिर वो सीख जाता है। यस, चौथा व्यक्ति जो है गिरने के बाद जब 6 महीने बाद होश आता है, फिर सोचता है कि पिछली बार जब गिरे थे तो वो फर्श ठीक नहीं था, फिसल गया था, अब मैं बहुत अच्छा सेटिंग करके फिर छलांग लगाऊंगा। यदि बुद्धिमान व्यक्ति है जानता है कि देखो दुनिया में कोई सुख है ही नहीं, और पहले ही वैरागी बन जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुख से सीख जाता है, और तीसरा खुद के अनुभव से सीखता है, और चौथा है वो सीखता ही नहीं। ये भगवान ने दुनिया ऐसे बनाई, आप कोई भी आश्रम में रहो सुख है ही नहीं, वो सुख इतना सा दिया है कि आप उसमें फंसे रहो। जैसे जो संसार में कोई कंपनीज होते हैं लोगों को चीटिंग करते हैं, तो चीटिंग करने में क्या होता है कि पहले थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाते हैं, तो व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरा लाभ हो रहा है। ये बड़े बड़े कैसिनोज होते हैं, जुआ खेलते हैं। मैं एक बार सिंगापुर में गया था, वहाँ पे कैसीनो बहुत होते, मैं अंदर नहीं गया था, मैंने खाली सुना था। तो वहाँ पे कैसीनो में, जुआ में लोगों को सब कुछ खो देते हैं। तो वहाँ की सरकार जो है, अगर कोई सिंगापुर का कोई नागरिक खेलने जाता है कैसीनो, तो उसको फाइन लगा, उसको $1,000 फीस भरना पड़ता है, और अगर भारत का या कोई दूसरे देश से कोई आता है उसको फ्री में देते हैं। ऐसा क्यों? जनरली ऐसा होता है अपने नागरिक के लिए फ्री होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे विदेशियों के लिए फ्री है और अपने देश वालों के लिए फीस है। क्यों? क्योंकि उसमें धोखा होने वाला है, तो अपने नागरिकों को नहीं गिनाना चाहते, तो माया देवी क्या करती है, कैसीनो में ऐसे सेटिंग होता है कि पहले आपको लगता है मैं जीत रहा हूँ, फिर आप $100 डालते हैं, फिर 200 डालते हैं, और फिर जब 10,000 डालते हैं तो पूरा ही सब कुछ छीन लेते हैं। जैसे मटेरियल वर्ल्ड भी ऐसा है कि माया देवी बहुत होशियार है, परम ठगनी है, ठग बोलते हैं चीटर को, तो माया देवी परम ठगनी है, हमारा सब कुछ छीन लेती है। ये मनुष्य शरीर जो भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है, माया देवी उसको अपनी सेवा में लगा के जन्म जन्म बांध के रख, हर योनि में हमें लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, ये मनुष्य शरीर में भी लगता है मैं सुखी हो रहा हूँ, वास्तव में सुख है ही नहीं। तो नारद मुनि जैसे कोई महापुरुष के संग से ही हम समझ सकते हैं, ये तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी वैराग्य नहीं आता, वैराग्य आता है वैरागी के संपर्क से। इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भक्ति में बहुत प्रगतिशील भक्त हैं उनके संग से हमारे अंदर भी वैराग्य की भावना जागृत हो। आज ऐसे ही हम ललिता सखी के बारे में बोल रहे हैं, तो ललिता सखी जो हैं वो कृष्ण लीला में ललिता सखी हैं, अष्ट सखी में से एक, और गौर लीला में वो किस रूप में आते हैं, स्वरूप दामोदर। तो सिर्फ 10-15 मिनट में थोड़ा सा चर्चा करूँगा ललिता सखी के बारे में और स्वरूप दामोदर के बारे में। मेरी कोई पात्रता नहीं है, और क्योंकि कल दोपहर के बाद ही मुझे पता चला, मुझे क्लास देना, जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और फिर आने के बाद मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा कि ललिता सखी, इनका जन्म स्थान जो है ऊंचा गांव है, बरसाना से थोड़ी दूरी पे है, और जो भगवान राधा और कृष्ण की सेवा करने वाले अष्ट सखियाँ हैं उनमें से प्रमुख सखी जो हैं वो ललिता सखी हैं, और उनका उम्र बताया गया 14 वर्ष 8 महीने और 27 दिन। इनका स्थान जो है वो यावट है, जो कि राधा रानी के स्थान के पास में है, ऐसे एक कुंज है, जैसे राधा और कृष्ण के लिए में कुंज बने होते हैं, ऐसे अष्ट सखी के भी कुंज बने हुए, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा और चित्रा सखी, और सब अष्ट सखियों के कुंज हैं आसपास। तो ये अष्ट सखियाँ जो हैं राधा और कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। मतलब हमारी जो परंपरा है गौड़ी परंपरा में सिखाती है कि हम राधा और कृष्ण की सेवा डायरेक्टली नहीं कर सकते, राधा और कृष्ण की सेवा करने वाले सखी हैं ललिता सखी के अंडर है रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शिला प्रभुपाद आते हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य, और उस परंपरा में ही हम भगवान की सेवा अगर करें तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो हाईएस्ट परफेक्शन है कि गोपियों के पद चिन्ह में चल, यानी गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। तो इनके जो इनका जो कुंज है इसका रंग बिजली के वर्ण का है, और वृंदावन के उत्तर दिशा में है। इनका कुंज जो आकार है वो एक फूल की तरह है, जिसके 8 पंखुड़ी हैं, कमल का फूल है जिसमें 8 पंखुड़ी हैं, और वो जो कमल का फूल है वो बड़ा होता है और छोटा होता है जैसे आवश्यक हो। जैसे एक बार एक भक्त पूछ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण रोज गोवर्धन जा रहे हैं गाय चराने के लिए, वृंदावन से गोवर्धन जाना है पैदल जाएं तो कितना समय लगता है, नहीं सुबह जाओ तो शायद शाम तक पहुँचे, लेकिन जब कृष्ण जब जैसे ब्रज का जो आकार ऐसे एक फूल की तरह है, कृष्ण को यहाँ से यहाँ जाना है तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, लेकिन जब भगवान जाना चाहते हैं तो वो फूल छोटा हो जाता है, एकदम पास में आ जाता है, आप यहाँ से यहाँ चले जाओ और फिर वो बड़ा हो जाता है। हरे कृष्ण, हम उस स्तर पे नहीं हैं, नहीं तो जैसे मुझे यहाँ दिल्ली से बम्बई जाना है इसको पास में ले आए और यहाँ पहुँच गए, नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, लेकिन राधा और कृष्ण की लीलाओं में होता है। जैसे हम भांडीरवन में देखते हैं एक बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ उस समय बताते हैं इतना विशाल था उसकी टहनी कि सारे कृष्ण के सखा जो हैं वो टहनी के ऊपर चढ़ के नदी पार कर लेते थे, वो यमुना के उस पार तक पहुँचते थे। तो यहाँ पे ललिता सखी का वर्णन किया गया कि वो सब सखियों के डायरेक्टर हैं, सबके लीडर हैं और बहुत होशियार हैं, और वो भगवान से संभोग और विप्रलम्ब दोनों दिशाओं में भाग लेते हैं। इनका स्वभाव वामस स्वभाव है, क्रोध का है, मतलब एक उनका गुण ऐसा है कि वो कई बार क्रोधित होते हैं और कई बार ऐसे शब्द जानबूझ के बोलते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए, वो कई बार कृष्ण के विरुद्ध भी बोलते हैं राधा रानी का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन उनका उद्देश्य कृष्ण को नाराज करना नहीं है, उनका उद्देश्य है कृष्ण और राधा की लीलाओं को और इंटेंस गहराई बनाना, और इनका स्वभाव बहुत उदार भी है, और कोई कोई लीलाओं में ऐसे व्यवहार करते हैं जिसे क्रोध जागृत, मान लीला के प्रेर रखें। मान लीला यानी क्रोध हो जाना, जैसे बरसाना में मान गड़े जहाँ पर राधा रानी क्रोध दिखाते हैं और फिर कृष्ण उनको प्रसन्न करने के लिए मोर की तरह नृत्य करते हैं। मोर कुटीर देखा है ना, मोर कुटीर ऐसे। तो ये मान लीला में आता है, और वो बहुत सुंदर पहेलियाँ बनाते हैं ललिता सखी, न केवल बनाते हैं दूसरे पहेलियों का हल भी देते हैं। भगवान के लिए फूलों की ड्रेस बनाना, फूलों से सज्जा बनाना, फूलों का छत्र बनाना, ये भी ललिता सखी की एक सेवा है। एक मंत्र ललिता का, नमो पातक विघ्न आघो ललित मोहनो सुभदौ कुंडो नीर मनोहर, कि ललिता देवी जो हैं वो भक्ति के सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और इनकी माता का नाम शारदा देवी है और इनके पिताजी का नाम है विशोक। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कभी कभी वो राधा रानी को प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान कृष्ण को ऐसे लग रहा है कि अपराध करते हैं। जब राधा और कृष्ण के मिलन लीला होती है, जैसे अब नंदगांव बरसाना देखते हैं, नंदगांव में श्याम सुंदर रह रहे हैं, बरसाना में लाडली जी हैं राधा रानी, तो उसके बीच में एक जगह है संकेत गांव है। संकेत मतलब जहाँ से इशारा होता है, जैसे कोई ट्रेन या सिग्नलिंग कहता है, तो वैसे ये सिग्नल्स बहते हैं मिलन के। तो पूर्णमासी और ललिता सखी ये दोनों मिलकर राधा और कृष्ण की मिलन लीला में सहायता करते हैं, और जब मिलन हो रहा होता है तो थोड़ी दूरी पर रहते हैं। राधा और कृष्ण के लिए जो छत्र होता है वो ललिता सखी धारण करते हैं। ये राधा और कृष्ण को कई बार फूलों के ड्रेस से सजाते हैं, और कई बार ऐसी कुटियों का निर्माण करते हैं जिसमें राधा और कृष्ण आनंद से लीला कर सकें। यहाँ पर आप राधा कुंड के पास जाओगे तो राधा कुंड की परिक्रमा में एक ललिता कुंड भी आता है, आपने शायद देखा होगा। तो ये ललिता कुंड है, इसकी भी ऐसे ही बताया गया कि जब राधा कुंड के निर्माण के समय कृष्ण ने पहले ललिता कुंड में स्नान किया, और जब कृष्ण को भी श्रीमती राधा रानी का संग चाहिए तो श्री कृष्ण भगवान पहले ललिता सखी के पास जाते हैं, और ललिता सखी जो है उनके राधा और कृष्ण के मिलन में सहायता करते हैं। उनके जो वस्त्र हैं ललिता सखी के वस्त्र, वो वस्त्र का जो कलर है वो मोर के पंख की तरह है, और उनके स्वयं का वर्ण जो है पीला, बिल्कुल गोरचरण की तरह उनका कलर है। इनके पति का नाम भैरव बताया गया, जो कि गोवर्धन मल के मित्र हैं। चंद्रावली के पति का नाम है गोवर्धन मल। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब वो स्वरूप दामोदर के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो हमेशा दो पार्षद उनके साथ में रहते। कौन दो थे? बहुत घनिष्ठ पार्षद, एक राय रामानंद और दूसरा स्वरूप दामोदर। राय रामानंद वो विशाखा सखी हैं, और स्वरूप दामोदर जो हैं वो ललिता सखी हैं। इन दोनों की सेवा थी, भगवान के मन में जो लीला चल रही है उसके अनुसार गाना। स्वरूप दामोदर बहुत अच्छे गायक थे। एक्चुअली पहले इनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य, और जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप लीला में थे तब भी वो भगवान के साथ थे। कुछ भक्त हैं नवदीप लीला में होते हैं और कुछ जगन्नाथपुरी लीला में, लेकिन कुछ हैं जो दोनों लीलाओं में होते हैं। तो जैसे हरिदास ठाकुर नवदीप लीला में भी थे, जब महाप्रभु ने संन्यास ली जगन्नाथपुरी में तब जगन्नाथपुरी आ गए। गदाधर पंडित नवदीप लीला में भी थे, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी में आ गए। तो स्वरूप दामोदर का पहले नाम था पुरुषोत्तम आचार्य, और जब उनको अचानक समाचार मिला कि मेरे प्राणनाथ नवदीप चंद्र, जिनके बहुत सुंदर घुंघराले केश हैं, अपने केशों को कटवा दिया है और संन्यास ले लिया है, तो बहुत दुखी हो गए, और एक्चुअली प्रेम से वो पागल हो गए। उस पागलपन में उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी संन्यास ले लूँगा। उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास कैसे लिया? वो संन्यास लिया लेकिन संन्यास के फॉर्मेलिटीज़ को नहीं स्वीकार किया। जनरली संन्यास लेने के बाद व्यक्ति का नाम बदला जाता है, जैसे भारती या पूरी, जैसे को टाइटल्स दिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना नाम स्वरूप रखा, जो स्वरूप एक्चुअली ब्रह्मचारी का नाम होता है, इनका नाम रखा गया स्वरूप। हालांकि सन्यासी थे, नाम ब्रह्मचारी का ही मेंटेन किया स्वरूप। और दामोदर, दामोदर ये नाम उनको दिया गया क्योंकि बहुत ही कुशल गायक थे, एक्सपर्ट सिंगर थे, तो इस तरह उनका नाम स्वरूप दामोदर हो गया। स्वरूप दामोदर भगवान के सेक्रेटरी सचिव थे, जगन्नाथपुरी में उनके साथ रहे। जितने वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, स्वरूप दामोदर उनके हमेशा साथ में थे, और उनके लिए सब व्यवस्था करना। ऑफकोर्स गोविंद भी थे, गोविंद भगवान के पर्सनल सेवक थे, लेकिन स्वरूप दामोदर ज़्यादा घनिष्ठ थे भगवान से। बाद में जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के आए और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़कर स्वरूप दामोदर को दे दिया, बोले कि आज से आप इनको स्वीकार करो अपने सेवक के रूप में या अपने पुत्र के रूप में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत नम्र थे, जब भी उनको कुछ करना होता है, कुछ पूछना होता, तो भगवान से डायरेक्टली नहीं पूछते, वो स्वरूप दामोदर के द्वारा पूछवाते। स्वरूप दामोदर उनके उनको गाइडेंस मार्गदर्शन करते थे। एक कहानी बताई गई कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठे थे और श्रीवास ठाकुर थे, स्वरूप दामोदर से मजाक कर रहे थे। श्रीवास ठाकुर मजाक में बोलने लगे कि आपके कृष्ण के पास क्या है, बिल्कुल ब्रज की धूल, मोर का पंख, ये तो कुछ कुछ ऐश्वर्य नहीं है। देखो वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है, भगवान नारायण के पास कितने लक्ष्मी हैं, ये ब्रज में क्या है, बस सरलता है, कुछ वृक्ष हैं, यमुना नदी है। इस तरह से नारद मुनि, श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार हैं, वो मजाक करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला कि ये नारद मुनि ये तो वैकुंठ के वासी हैं, आप स्वरूप दामोदर आप ब्रजवासी हो, आप कुछ बताओ वृंदावन की महिमा। तो स्वरूप दामोदर ने बताना शुरू किया कि वास्तव में ब्रज की महिमा क्या है, यहाँ की धूल धूल नहीं है, ये चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। ने ब्रज की महिमा का गान करना शुरू किया कि ब्रज में सब कुछ दिव्य है, यहाँ के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष है, यहाँ का पानी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अमृत के समान है। गोलक वृंदावन में कोई चलता नहीं है, सिर्फ नृत्य होता है, कोई ई रिक्शा नहीं, बैटरी रिक्शा नहीं, और नहीं टू व्हीलर्स फोर व्हीलर, सब नृत्य करते हैं। और जो ऐश्वर्य है वृंदावन का, उसके सामने वैकुंठ तो कुछ भी नहीं है। वैकुंठ की भक्ति और व्रज की भक्ति दोनों अच्छी है, लेकिन वैकुंठ भक्ति में ऐश्वर्य का भाव है कि कृष्ण भगवान नारायण परम श्रेष्ठ हैं, मैं इनका दास हूँ। लेकिन ब्रज में जो भक्ति है उसमें यह भाव है कि कृष्ण मेरे हैं। यशोदा माता को कृष्ण अपने मानते, जब कोई बिजली कड़कती है, आवाज आती है, तो कृष्ण दौड़ते माँ की गोद में चले जाते हैं। और यशोदा माता ही नहीं बोलती, अरे तुम तो भगवान हो, क्यों डर रहे हो, नहीं, यशोदा माता उनको प्रेम से अपनी गोद में लेके उनके डर को दूर करते हैं। जब कृष्ण को भूख लगती है तो यशोदा माता अपने हाथों से उनको प्रसाद खिला रहे। इसलिए ब्रज की जो प्रेम है, ब्रज की भक्ति है, वो वैकुंठ से कई गुना ज़्यादा ऊंचे स्तर के ऊपर है। और इस व्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। अनार्पिता चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण, जो ब्रज प्रेम जो और किसी अवतार ने कभी वितरित नहीं किया, वो व्रज प्रेम का वितरण करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए। राधा भाव अद्युति सुविलिता, परसों राधाष्टमी आ रही है, तो दो तीन दिन आज कल परसों हमें प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी की कृपा के लिए प्रार्थना करें, राधा रानी से भीख मांगे, क्योंकि जितनी भी भक्ति है वो राधा रानी की कृपा से ही मिलती है। ब्रज में वास मिलता है वो भी राधा रानी की कृपा से मिलती है, और राधा रानी के प्रमुख जो सखी हैं वो ललिता सखी। आज ललिता सखी के आविर्भाव दिवस पे हमें ललिता सखी से प्रार्थना करनी है कि हम भी कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकें, कैसे हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। ये ललिता अष्टकम है जो आप में से कई लोगों को पता होगा, उसका हम बस समय नहीं है, लेकिन जब भी आपको समय मिले तब उनका गान करे ललिताष्टकम, जिसमें ललिता के गुणों का गान किया गया, और वही ललिता सखी स्वरूप दामोदर के रूप में हमें सहायता करते हैं। मैं सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ लूँगा क्योंकि समय कम है। ये रूप गोस्वामी में लिखा है ललिताष्टकम, इसका पहला श्लोक है, मैं ललिता देवी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिसके बहुत सारे अद्भुत गुण हैं। ये राधा मुकुंद के जो चरण कमल हैं उनके पसीनों की पूजा करते हैं मित्रता के कारण। मैं उन ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जिनके बहुत सारे दिव्य गुण हैं, उनका मुख इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा की सुंदरता को पराजित करता है, और उनकी आँखें जो हैं एक सुंदर हिरण के आँखों के समान हैं, और ये राधिका को सजाने में बहुत कुशल हैं। तीसरा श्लोक है, मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जिनके बहुत अद्भुत गुण हैं। उनका एक सिल्क की ड्रेस है जो कि मोर के पंख के कलर के समान है, और उनका वर्ण जो है गोल्डन है, गोरोचन बोलते हैं उसको, गोरोचन जो ललिता सखी के जो कलर है। चौथा श्लोक है, मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जो राधा रानी को सिखा रहे हैं वाम भाव। वाम भाव होता है मतलब क्रोध का भाव, मतलब जो क्रोध नहीं एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा भगवान को, भगवान की लीलाओं में थोड़ा आनंद, जैसे थोड़ा सा कुछ मिर्च डालें तो टेस्टी हो जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे आनंद करने के लिए वो राधा रानी को सिखा रहे हैं कि ये जो ब्रज के जो पुत्र है इसको रिजेक्ट करो, हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ उसकी शरण में मत जाओ। हरे कृष्ण, ये हमारे लिए नहीं है, राधा रानी के लिए बोल रहे हैं। पाँचवा श्लोक है कि ललिता सखी वो प्रणाम करते हैं अगर वो देखते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जब राधा रानी को ट्रांसेंडेंटली कोई धोखा दे रहे हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो कृष्ण को बहुत होशियार से शब्दों से उनको लज्जित करते हैं। और लास्ट ये दो श्लोक बचे हैं, छठा श्लोक में वो बोलते हैं कि मैं ललिता देवी को प्रणाम करता हूँ जिनके अंदर भगवान कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम है और सारा स्नेह है, तो सारे सखियों के शिक्षक हैं। और सातवां श्लोक है, ये राधा रानी सॉरी ललिता सखी को प्रणाम करते हैं वो हरेक जो गोपी हैं उनको राधा रानी के पार्टी में ले आते हैं और राधा रानी की इच्छाओं को पूरी करते हैं। सातवां श्लोक है कि मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जब उन्होंने देखा कि कृष्ण और राधा रानी का मिलन हो रहा है तो उनको बहुत खुशी हुई। मैं ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ जो राधा रानी और कृष्ण के मिलन में बहुत आनंद लेते हैं, और जो भी व्यक्ति, और लास्ट में बोला गया सारे गोकुल के जो सखियाँ हैं उसमें राधा रानी सबसे प्रिय ललिता सखी। जो भी कोई इन श्लोकों का गान करता है उसको राधा और कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। श्री ललिता सखी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।